नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे और टिहरी में देश के पहले परिवर्तनीय गति वाले 1000 मेगावाट क्षमता के पंप स्टोरेज प्लांट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, नीति निर्माण में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में सहायक होगी। भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया। राष्ट्र आज भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने अमरीकी नौसेना द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी को संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन बताया। और चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे और टिहरी में देश के पहले परिवर्तनीय गति वाले 1000 मेगावाट क्षमता के पंप स्टोरेज प्लांट का उद्घाटन किया। दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा प्रमुख पर्यटन और आर्थिक केंद्रों के बीच क्षेत्रीय आर्थिक विकास को मजबूत करेगा और पूरे क्षेत्र में व्यापार तथा विकास के नए अवसर सृजित करेगा। प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
सबसे पहले तो मैं आप सब की क्षमा चाहता हूं, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कार्यक्रम में जुड़े हुए लोगों की भी क्षमा मांगता हूं कि मुझे यहां पहुंचने में 1 घंटे से भी ज्यादा देर हो गई। सब स्थान पर लंबे समय तक आप सबको इंतजार करना पड़ा और कारण यही था, मैं निकला तो समय पर था लेकिन करीब करीब 12 किलोमीटर का रोड शो काली मंदिर से लेकर के यहां तक, इतना उत्साह इतना उमंग कि मेरे लिए तेज गति से गाड़ी चढ़ाना वाला मुश्किल हो गया। तो धीरे धीरे लोगों को प्रणाम करते करते, जनता जनार्दन के आशीर्वाद लेते लेते यहां पहुंचने में मुझे 1 घंटे से भी ज्यादा देर हो गई और इसके लिए मैं आपकी क्षमा मांगता हूं। और ऐसी धूप में 12 किलोमीटर ये जन सैलाब, ये उत्तराखंड का प्यार, माता और बहनों का आशीर्वाद, मैं आज उत्तराखंड से एक नई ऊर्जा लेकर के जाऊंगा, नई प्रेरणा लेकर के जाऊंगा और मैं इसके लिए हर किसी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, आज देश में पर्व त्योहार की उमंग है, विभिन्न विश्वों में नववर्ष का आगमन हुआ है। मैं देशवासियों को बैसाखी, बोहाग बिहू और पुथांडू की शुभकामनाएं देता हूं।
इस अवसर पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित हैं। श्री गडकरी ने कहा कि ये पूरे उत्तराखंड के लिए आर्थिक द्वार खोल रहा है।
यह एक्सप्रेसवे बनने से देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश सहित समूचे उत्तराखंड के लिए एक आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक विकास के लिए नए द्वार खुलने वाले हैं। इसकी लागत 12,000 करोड़ रुपए है। ये 213 किलोमीटर 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे है। अभी 8 घंटे लगते हैं, अब ये सफर 2 से सवा 2 घंटे में हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ के विकास के लिए बहुत गतिशीलता मिलेगी।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज राज्य देश का श्रेष्ठ राज्य बनने के संकल्प को पूरा कर रहा है।
और आज 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बने एशिया के सबसे लंबे एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर की सौगात लेकर आए हैं। इसके लिए उत्तराखंड के सभी प्रदेशवासियों की ओर से मैं आपका हृदय तल से धन्यवाद करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज आपके नेतृत्व में उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बनने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए विकास भी और विरासत भी की अवधारणा के अनुरूप प्रत्येक क्षेत्र में काम कर रहा है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये दिल्ली की आधुनिकता को देवभूमि की आध्यात्मिकता से जोड़ रहा है।
12,000 करोड़ की लागत से हमें एक ऐसा एक्सप्रेस वे मिला जिसमें 6.5 घंटे की दूरी मात्र 2 से 2.5 घंटे के बीच में तय हो सकती है। ये दिल्ली और देहरादून के बीच की उस दूरी को कम नहीं कर रहा, ये दिल्ली की आधुनिकता को देव भूमि की आध्यात्मिकता से जोड़ रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नीति निर्माण और निर्णय लेने में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से वर्ष 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। भारत की नारी शक्ति को लिखे पत्र में श्री मोदी ने कहा कि 16 अप्रैल को संसद नारी शक्ति वंदन अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन पर चर्चा और इसे पारित करने के लिए दोबारा सत्र शुरू करेगी। प्रधानमंत्री ने सदन में इस विधेयक के पारित होने की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि देशभर की महिलाएं विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का एक अनूठा अवसर मिलने पर खुशी व्यक्त कर रही हैं। युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए सुश्री खड़से ने कहा कि ग्राम पंचायतों से लेकर नगर निगमों और परिषदों तक तथा विभिन्न स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए लगभग 50% आरक्षण व्यवस्था पहले से ही मौजूद है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अनुमोदित नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने आज चेन्नई में प्रदेश भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया। उन्होंने कहा कि एनडीए प्रत्येक परिवार को 10,000 रूपये, महिलाओं को हर महीने 2,000 रूपये और सालाना 3 मुफ्त गैस सिलेंडर देगी। घोषणा पत्र के अनुसार भगवान मुरुगन का त्यौहार तई पूसम राज्य पर्व के रूप में मनाया जाएगा। दीपोत्थान पर दीपक जलाया जाएगा, नशा संबंधी समस्याओं का समाधान किया जाएगा और सब्जियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया जाएगा। महिला लघु और मध्यम उद्यमियों को बिना ब्याज के विनिर्माण क्षेत्र के लिए 1,50,00,000 रूपये का ऋण दिया जाएगा और पहली बार स्नातक होने वालों को 10,00,000 रूपये की सहायता दी जाएगी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार जोरों पर है। विभिन्न राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह तथा कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी आज राज्य में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए 2,926 उम्मीदवार मैदान में हैं। राज्य में 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में 23 अप्रैल और दूसरे चरण में 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में नाम वापस लेने के बाद उम्मीदवारों की कुल संख्या 1,478 है और दूसरे चरण के लिए 1,448 उम्मीदवार मैदान में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नमो ऐप के माध्यम से मेरा बूथ सबसे मजबूत के अंतर्गत पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के बूथ कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपना इस्तीफा राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन को सौंपेंगे। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि नई सरकार को उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा और उन्होंने अपनी स्वेच्छा से इस्तीफा दिया।
माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं निर्णय लिया, राज्यसभा के सदस्य हो गए, तो अब उन्होंने तय किया है इस्तीफा करेंगे और फिर नए मुख्यमंत्री एनडीए के नेता के रूप में बनेंगे। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की बैठक है, हमारे यहाँ नेता का चुनाव होगा।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बताया कि आज दोपहर बाद भाजपा विधायक दल की बैठक होगी, बैठक में विधायक दल के नेता का चयन होगा।
भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भाजपा के विधानमंडल दल के नेता के चयन हेतु विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी रहेंगे और एनडीए की बैठक बिहार विधानसभा के सेंट्रल हॉल में 4 बजे बुलाई गई है, जिसमें एनडीए के विधानमंडल दल के नेता का चयन होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का एक लेख साझा किया। लेख में बताया गया है कि भारत कैसे फार्मास्यूटिकल सेक्टर में वैश्विक प्रतिस्पर्धा का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश में फार्मा क्षेत्र विश्व की फार्मेसी से नवाचार के केंद्र के रूप में उभर रहा है। भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की 136वीं जयंती पर राष्ट्र आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। भारत रत्न डॉक्टर आम्बेडकर का ये विचार आज भी सामाजिक न्याय और समानता के लिए मानव समाज का मार्गदर्शन करता है। डॉक्टर आम्बेडकर जातिवाद और छुआछूत के कट्टर विरोधी थे। उनका मत था कि समाज में वास्तविक समानता तभी संभव है जब हर व्यक्ति को समान अवसर मिले। वे कहते थे कि मनुष्य नश्वर है, लेकिन विचार अमर होते हैं। संघर्ष, त्याग और ज्ञान की मिसाल डॉक्टर आम्बेडकर की बदौलत ही आज समाज में सभी तक सभी अवसरों की पहुंच सुनिश्चित है। शिक्षा के बारे में डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। डॉक्टर आम्बेडकर 64 विषयों में मास्टर थे। उन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था और उनके पास कुल 32 डिग्रियां थी। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में 8 साल की पढ़ाई महज 2 साल 3 महीने में पूरी की। उनकी इसी सुदृढ़ शैक्षणिक पृष्ठभूमि का ही फलसफा था कि उन्हें संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। महिला सशक्तिकरण में भी डॉक्टर आम्बेडकर का योगदान उल्लेखनीय है। उन्होंने कहा था कि मैं किसी समुदाय की प्रगति को महिलाओं द्वारा हासिल की गई प्रगति की डिग्री से मापता हूं। वर्तमान में भी केंद्र सरकार का महिलाओं के नेतृत्व में विकास पर जोर और नारी शक्ति वंदन अधिनियम उनके इन्हीं विचारों की परिणति है। नमन है माँ भारती के ऐसे सपूत को।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने देशवासियों को वैसाखी, विशु, विषुव, बोहाग बिहु, पोइला बोईशाख, मेषादी, वैशाखादी और पुतांडू के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत अमीर सईद इरावानी ने अमरीका द्वारा ईरान के बंदरगाहों के नाकेबंदी की निंदा की है। श्री इरावानी ने इसे ईरान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का गंभीर उल्लंघन बताया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज इसराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार से टेलीफोन पर बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि इस दौरान पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा हुई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे और टिहरी में देश के पहले परिवर्तनीय गति वाले 1000 मेगावाट क्षमता के पंप स्टोरेज प्लांट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, नीति निर्माण में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में सहायक होगी। भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी किया। राष्ट्र आज भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।